काफिया शाह हुसैन, पृष्ठ 40, 5, राग रामकली। अही निसी वसी रही दिल मेरे, सूरती यार प्यारी दी, बाग तेरा बगीचा तेरा, मैं बुलबुली बाग तिहारे दी। एक रहाऊं आपने शहोनू आप रिग्यावा, हाजती नहीं पसारे दी। एक कहे हुसैन फकीर रिमाड़ा, थीवा खाक दुआरे दी। दो अही अर्थात दिन, निसी अर्थात रात, शहु अर्थात पति या प्रीतम, हाजती अर्थात जरूरत, पसारे अर्थात फैलाव, थीवा अर्थात हो जाऊं, निमाड़ा अर्थात बेचारा। व्याख्या, मेरे दिल में दिन रात से अपने प्यारे यार अथवा प्रीतम की सूरत बसी हुई है। यह बाग बगीचा अर्थात सारी दुनिया और इसके रंग तमाशे उस प्रीतम के हैं, और मैं अर्थात जीवात्मा इस दुनिया रूपी बाग की सिर्फ एक बुलबुल हूँ। रहा हूँ अपने प्रीतम को मुझे स्वयं ही रिझाना या प्रसन्न करना होगा इस दुनियावी रंग तमाशे तथा राग रंग के फैलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। बेचारा फकीर हुसैन सिर्फ अपने प्रीतम के द्वार की खाक हो जाना चाहता है। अर्थात चार पंक्तियों की इस छोटी सी काफी में कवि शाह हुसैन कई भाव प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार उसके मन अंदर उसके प्रीतम की सूरत बसी हुई है। वह अपने प्रीतम से मिलना चाहता है, परंतु यह दुनिया की माया विभिन्न रंग खुशियां उसे अपनी ओर खींचते हैं, जबकि वह अर्थात जीवात्मा एक बुलबुल की भांति इस दुनिया रूपी बाग में सिर्फ चहक सकती है, घूम फिर सकती है। वह इसमें और कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीतम की प्राप्ति के लिए दुनियावी राग रंग काम नहीं आते। उसे प्राप्त करने या प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही तैयार करना पड़ता है। यह तैयारी इस प्रकार की हो कि जीवात्मा का अस्तित्व ही मिट जाए, यह अस्तित्व प्रीतम के द्वार तक पहुँचते ही खाक में मिल जाना चाहिए। प्रीतम से मिलन तभी संभव होगा, अर्थात अपने अस्तित्व को विलीन कर मिट्टी में मिलाकर हमेशा के लिए मिटकर। 6. राग तिलंग। अत्तड़ में क्यों आई सा मेरी तंदना, पाया काए आउदिया उठी, खेड़र लगी चरखा छड़िया वाए। एक रहाऊ कत्तड़ कारण गोहणे आंदे, गईया बलेदा खाए। एक होरना दिया अड़ी अट्टिया, निमाड़े दे अड़ी कपाही। दो होरना कत्तिया पंज सत्त पूड़िया, मैं की आखांगी जाए। तीन कहे हुसैन सुच्चजिया नारी, लैसन शहु गल लाए। चार पृष्ठ 41। अत्तड़ अर्थात रिजड़ अर्थात आंगन, जहाँ लड़कियाँ इकट्ठे बैठकर चरखा काटती हैं। तंद अर्थात सूत की तार, या काय अर्थात कोई भी, चाय अर्थात उठाकर, गोहड़े अर्थात पूड़ियाँ या पूड़ी बनाने से पहले की स्थिति में रुई, बलेदा अर्थात बैल या बछड़ा, अड़ी अर्थात उलझ जाना, सुचियां सुचजियां अर्थात गुणवंती या नारी, औरतें या स्त्रियां। व्याख्या, मैं इस रिंजड़ अर्थात दुनिया में आई ही क्यों, जबकि मैंने यहाँ आकर कोई भी काम नहीं किया। मैंने रिंजड़ में एक भी धागा नहीं काटा। यहाँ आते ही मैं सखियों के साथ मिलकर खेलने लगी, और मैंने चरखा उठाकर एक ओर रख दिया, अर्थात जिस काम को करने के लिए जीवात्मा को इस संसार में भेजा गया उसने उसी काम को ही पूरी तरह से भुला दिया और स्वयं इस दुनिया की चमक दमक में डूब गई। रहाऊ, काटने के लिए मैं भी पूड़िया साथ लाई थी, उसे बैल या बछड़े ने खा लिया। एक कुछ सखियों के पूर्ण काटते हुए धागे अटक गए, परंतु मेरी तो कपास या रुई ही उलझ गई। दो कुछ सखियों ने कुछ काम कर लिया और 5-7 पूड़ियां काट ली, परंतु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं वापस जाकर क्या कहूंगी। तीन हुसैन के अनुसार गुणवंती स्त्रियों जिन्होंने अपना काम सलीके से किया है, प्रीतम उन्हें ही अपने गले से लगाएगा। चार अर्थात इस काफी में कवि शाह हुसैन जीवात्मा के इस धरती पर आने के मकसद संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार सभी मनुष्य इस दुनिया में आते ही अपने परमात्मा से मिलने के उद्देश्य को भूलकर दुनियावी खेल तमाशों में ही स्वयं को भुला देते हैं। जो संस्कार या परमात्मा से मिलने की तड़प संबंधी अंश उसमें मौजूद होता है, मनुष्य की लापरवाही के कारण उसे कोई और निगल जाता है। इस प्रकार मकसद की शुरुआत जिस अंश से होनी चाहिए वही अटक या खो जाता है। परंतु जो मनुष्य इस दुनिया में आकर थोड़ा बहुत भी परमात्मा के नाम को याद करते हैं, परमात्मा उन गुणवान मनुष्यों को ही अपने में समाता है। जबकि अन्य मनुष्य क्या कहेंगे कि उन्होंने दुनिया में जाकर क्या काम किया है। सात राग कानड़ा अनि संयो नी मैं कत्तदी कत्तदी हुट्टटी अत्तण दे बिच गोणे रुल दे हथे बिच रह गई जिट्टी। एक रहाउ पृष्ठ 42 सारे वरे विच छल्ली एक कत्ती काग मरेंदा छिट्टी। एक सेजे आवा कंत न चवा काई वग गई कलमो अपुट्ठी। दो भला भय आ मेरा चरखा भना मेरी जिंद अजाबो छुट्टी। तीन कहे हुसैन फकीर साईदा सब दुनिया जांदी डिट्ठे। चार साइयों अर्थात सखियों हुट्टी अर्थात थकी गई थक गई अत्तण अर्थात आंगन या रिंजड़ गोहड़े अर्थात पुणिया या जिट्टी अर्थात पुड़ियों का गोला काग अर्थात कौवा जिट्टी अर्थात झपट्टा मारना आवा अर्थात पास आना अपुट्ठी अर्थात उल्टी अजाबू अर्थात दुख या शारीरिक कष्ट डिट्ठी अर्थात देखी। व्याख्या ऐसखी मैं काटते काटते थक गई हूँ आंगन में त्रिछ जर्ण में सभी जगहों पर पूनिया बिखरी हुई है, परंतु पूनियों का गोला मेरे हाथ में ही रह गया है। अर्थात इस दुनिया में काम करते करते मैं अर्थात जीवात्मा पूरी तरह से थक गई हूँ। आंगन में या इस दुनिया में अनेक प्रकार की वस्तुएं और काम बिखरे हुए हैं, परंतु मैं अन्य काम करते करते इस कदर थक गई हूँ कि मेरे हाथ में ही पूनी का गोला रह गया है। रहा हूँ मैंने इतने सालों में सिर्फ एक पूनी को ढंग से काटा है, जबकि कौवा लगातार उस पर झपट्टा मारने की कोशिश में लगा रहता है। एक मेरे इस निकम्मेपन की वजह से जब मैं अपने पति या परमात्मा के नज़दीक जाने की कोशिश करती हूँ तो वह मुझसे अपनी नाराज़गी जाहिर करता है। मालूम नहीं मेरी किस्मत इतनी उल्टी या ख़राब कैसे हो गई है। दो एक तरह से यह अच्छा ही हुआ जो मुझे मौत आ गई, यानी मेरा चरखा टूट गया। कम से कम प्रीतम के वियोग की पीड़ा सहने से तो मेरी जान छूट गई। तीन फकीर हुसैन का कहना सही है, क्योंकि सारी दुनिया ही मौत के गर्त में जाती हुई नजर आती है। 4. अर्थात शाह हुसैन के अनुसार मनुष्य इस संसार में आकर दुनिया के अन्य काम धंधों में इतना उलझ जाता है कि उसे प्रभु के नाम का जाप करना एकदम भूल जाता है। वह इस दुनिया में मोह, ममता या अन्य विकारों के इतने काम फैला लेता है कि जब प्रभु सिमरन की बात आती है तो थकावट के कारण वह काम पूरा ही नहीं हो पाता। इतनी उम्र में यदि कभी प्रभु सिमरन किया भी तो उसे किसी न किसी ढंग अन्य लोगों या शारीरिक हरकतों से कौवे जैसा कोई रोकने या झपट्टा मारने की कोशिश करता नजर आता है। इस संसार में प्रीतम को हरदम भुला देने के कारण प्रीतम मनुष्य रूपी स्त्री से दूर हो जाता है। उसका वियोग सहना कितना कठिन है, परंतु यह उसकी किस्मत के काले लेख होने के कारण ऐसा होता पृष्ठ 43 है। बहुत अच्छा हो जाता है जब मनुष्य की मृत्यु होती है, क्योंकि मरने के बाद उसे परमात्मा के पास पहुंचना होता है। मौत से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आकर सभी को वापस जाना है। दूसरे शब्दों में परमात्मा के वियोग रूपी शारीरिक कष्टों से मुक्ति मृत्यु के रूप में प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में आकर मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और फिर मृत्यु ही उसके शारीरिक दुखों का अंत कर उसे प्रभु के पास ले जाने का उत्तम कार्य करती है। 8. राग कानड़ा तिलंग। अनि जिंदे मौडड़िये तेरा नलियादा वक्त विहाणा एक रहाओ। राती कत्ते दिही अटेरे गोशे लाइयो ताड़ा। 2. कोई जो तंद पई अवली साहेब मूल न भाड़ा। 3. चीरी आई ढिल ना काई किया राजा किया राणा। 4. कहे हुसैन फकीर साईं दा डाढ़े दा राहो निमाड़ा। 5. जिंदे अर्थात जान या प्राण। मैडणीये अर्थात मेरी। विहाड़ा अर्थात बीत गया। वक्त अर्थात वक्त। गोशे अर्थात नुक्कर या कोना। अवल्ली अर्थात खराब या गलत। साहिब अर्थात परमेश्वर या मालिक। चीरी अर्थात चिट्ठी। डाढ़े अर्थात सख्त या निमाड़ा बेचारी। व्याख्या: बेपरवाह रहने वाली मेरी जान ने जब अमल करने अर्थात अच्छे कर्म करने का वक्त था, उसे बेकार के कामों में ही बिता दिया, यानी उम्र दुनियादारी के फिजूल कामों में व्यतीत हो गई। यह पंक्ति राहु की है, अर्थात इसी पंक्ति में काफी का मूल भाव निहित है, जो उम्र के बीच जाने से संबंधित है। रात के समय तू काटने लगती है और दिन में अटेरती है। कोनों में कर्म इसका धागा खींचना पड़ता है, अर्थात रात के अंधेरे में प्रभु के नाम का जप कर दिन में कामकाज में प्रभु के सिमरन का समय नहीं मिलता। 2. यदि इस दौरान कोई भी धागा गलत बन गया तो उसे मालिक का हुक्म समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। 3. जब मौत की चिट्ठी या संदेश आ गया तो फिर जान जाने में जरा भी देरी नहीं होती, चाहे कोई राजा हो या रंग। 4. हुसैन फकीर का कहना है कि सख्त और बेपरवाह आदमी भी मरते समय बहुत बेचारगी महसूस करता है। 5. पृष्ठ 44 अर्थात मौत का समय निश्चित है और उससे राजा रंक किसी को भी निजात नहीं मिल सकती, इसलिए समय रहते ही प्रभु से नाता जोड़ लेना चाहिए।